देखता है। माताजी बेचारी परेशान, अरे तुम काम नहीं करोगे तो पालना कैसे होगी परिवार की। लेकिन उसको कोई चिंता नहीं किसी की, गर्मी बहुत है, कोई समस्या जीवन में ना आए। हमें लंबे समय से स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास करना है। किसे कहते हैं स्मृति स्वरूप, ये उत्तर भाई देंगे। बोलो। बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई हैं, उनका स्वरूप बन जाए जीवन। मुझे आज एक बात याद आती रही, बाबा ने देह छोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है। देह छोड़ना भी एक बड़ा काम है ना, या छोटा सा है? बहुत बड़ा आजकल। और जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा तो देह छोड़ना ही धर्मराजपुरी बनती जाएगी। तो बाबा की बात है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है स्मृति स्वरूप होकर देह का त्याग करना। क्या स्मृति? बाबा मैं ये देह छोड़कर आपके पास आ रही हूँ, आत्मा उठ जाए, ये स्मृति। बाबा ने कहा अचानक देह छूटना भी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। सोचें सभी, अचानक छूटना बिना बीमारियों के भी अच्छी बात है ना, लेकिन सबसे अच्छा है स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना। और ये वही कर सकेंगे जो लंबा काल स्मृति स्वरूप रहे होंगे, जिन्होंने लंबा काल देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस की होगी। तो बाबा की कुछ स्मृतियां निकाल लेते हैं। बाबा ने आते ही हमें पहली स्मृति तो दिलाई, तुम आत्माएं हो। लेकिन और स्मृतियां दिलाई कुछ? ये पहली स्मृतियां। बाबा ने कहा तुम्हारा 84 जन्मों का खेल पूरा हो रहा है, अब तुम्हें, बोलो आगे बोलो, मैं नहीं बोल रहा आगे, अब तुम्हें, डर लगता है ना, अब तुम्हें, और इससे पहले भी कुछ जोड़ो, वही तो, उसी से तो डरते हैं सब कि भगवान मिला ये तो ठीक है, बाकी ये चीज बड़ी खराब है, हैं? नहीं, पवित्र बनने में तो आनंद है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर वापस जाना है। अब जिसने पूरा जीवन मेहनत करके सब कुछ कमाया हो, बच्चों को बहुत प्यार दिया, उनके लिए जीवन लगा दिया हो, अब बाबा कहे इन सब को छोड़ दो और चलो मेरे साथ, तो क्या होगा माताओं को? हैं, बोलो क्या होगा? चलेंगे या नहीं? कहेंगे बाबा थोड़ा दिन और रह लेने दो, रह भी लेने दे तो जाना तो पड़ेगा। वो सब चीजें खींचेंगी जो बहुत संभाल के रखी हुई हैं। सभी सोच लो, माताओं ने माल संभाल के काफी रखा हुआ है, हैं? रखा है ना, रखा है, कन्याओं के पास तो नहीं होता, तो वो खींचेंगी, ये सब छोड़ दें। जो चीज मनुष्य अपने पास रखता है उसमें भी ममत्व रहता है। कईयों के साथ ये हो रहा है कि देह के संबंधों में ममत्व नहीं, लेकिन वस्तुओं में बहुत ममत्व है। आगे हो जाओ थोड़ा। वस्तुओं में बहुत ममत्व है। बाबा क्या करते हैं, बस एक ही बात दे दो, रखने की जरूरत नहीं। बाबा कहा करते हैं, ठिकरी कहते हैं सिंधी में, ठिकरी, मिट्टी के बर्तनों में भी बहुत मोह रह जाता है अपना, क्योंकि सुख देते हैं ना कुछ चीजें। ऑक्सीजन में घड़ा लिया, पानी पिया 4 मास गर्मी में, अब उसे फेंक दें, भारी लगता है। भले नए घड़े का ही अगले साल पीना चाहिए, 1 साल उसे क्या संभालेंगे, लेकिन भारी तो लगता है ना। तो माताएं उसमें अनाज भर के रख देती थी पहले के, रखा तो रहे सुरक्षित। स्मृति दिलाई तुम्हें सब कुछ छोड़कर वापिस चलना है। सब कुछ छोड़ने के लिए बहुत अच्छी बात सिखा दी, जो भगवान के सिवाय कोई नहीं सिखाता दुनिया में, सिखा भी नहीं सकता। रोज मुरलियों में आता है, अभी भी आता रहा है, सब कुछ मुझे अर्पित करके क्या बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। और इसका अर्थ है कि जो कुछ हमारे पास है परिवार सहित, मन से ये भावना कर दें, बाबा ये सब कुछ तेरा है, फिर यूज करेंगे। बच्चों की संभाल कर रहे छोटे बच्चों की माताएं किस संकल्प से करें, अब तो सब क्लियर है बात, किस संकल्प से करें, ये बच्चे बाबा के हैं, कहने के लिए ना हो जाए तुम्हारे बच्चों की हम संभाल कर रहे हैं। और क्या स्मृति दिलाई, कुछ स्मृतियां सतयुग की, कुछ भक्ति काल की, कुछ संगम युग की, कुछ कल्प कल्प की, कुछ स्मृतियां दिलाई। बोलो क्या दिलाया, याद याद दिलाया है? जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो हम ही हैं। सचमुच लगता है माताओं को ऐसा या नहीं? या मंदिरों में जाएं थोड़ा, देख तो आए देवी कैसी है, नाराज ना हो जाए। देवियां नाराज होती हैं ना, यहाँ भी हो जाती हैं, तो वहां भी हो जाती हैं, तो पत्थर की मूर्ति भी हो जाती है। हम वही हैं जिनकी मंदिरों में, आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी बात मैं क्यों याद दिला रहा हूं बार बार, क्यों? अगर ये याद आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जैसी वो पत्थर की मूर्तियां हैं वैसी हम बन जाएंगे। वो तो पत्थर की हैं, फिर भी उनमें आकर्षण है ना, बहुत कुछ है उनमें भी, तब तो भक्ति चलती आ रही ना, भक्ति को बल मिला हुआ है। अगर उनमें कुछ ना होता तो भक्ति नष्ट हो जाती। कलयुग के अंत तक भी भक्ति कायम है। अगर हम इस गुड फीलिंग में रहने लगे, हम वही हैं मंदिरों में जिनके दर्शन करके भक्त भी निहाल हो रहे हैं, मंदिरों में जिनके दर्शन करके लोगों के बिगड़े काम संवर रहे हैं, हम वही हैं, तो हमारे अंदर वो महानताएं आ जाएंगी। ठीक है, और क्या स्मृति दिलाई, अब माताएं बताएंगी। कुछ स्मृतियां दिलाई हैं, माताओं को खास दिलाया है। कौन सी खास माताओं के लिए, कौन हो तुम, बोलो जरा धीरे बोल रही, शक्तियां इतनी धीरे बोलेंगी तो शक्तियां भी लज्जा करेंगी। क्या है, शिव की शक्ति, जिनके पास शिव की शक्ति हो वो कितने शक्तिशाली हो गए। स्वयं ही शिव की शक्ति हो, दो चीजें हैं, हमारे पास शिव की शक्ति और दूसरा हम ही शिव की शक्ति। समझते हैं ना इसका अंतर। माताओं को 4 बच्चे हो, एक माता कह सकती है मैं ये 4 बच्चे ही मेरा बल है या नहीं, और बल भी होंगे। ऐसे ही भगवान भी कहेगा मेरे बच्चे ही मेरी शक्ति हैं। जिसके पास जितने बच्चे उसकी शक्तियां उतनी ज्यादा, और शिव के पास सबसे ज्यादा बच्चे, और उसमें भी महान बच्चे कितने लाखों। तो सबसे बड़ी शक्ति हम शिव की हैं, तो किससे नहीं डरना है, एक माया से नहीं डरना है। दूसरा, माया से तो नहीं डरते पर और चीजों से डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरना है और किससे नहीं डरना है, परिस्थितियों से नहीं डरना है, दुनिया से नहीं डरना है और कमजोरियों से भी नहीं डरना। ठीक बात है। और आगे चलो, देह की बीमारियों से भी नहीं डरना है। जीवन में एक और चीज आती है, कोई बुरा बुरा बोले उससे भी विचलित नहीं होना है। ये बड़ी समस्या बहुतों के सामने आती है। दो केस ऐसे ही कल मेरे पास थे कि लोग बुरा बोलते हैं, अपना नशा उतर जाता है। और एक ऐसा केस था कि दूसरों को बड़ा देखकर अपने में हीन भावना आती है। दोनों ही बातें बहुत खराब हैं। अगर हम अपने स्वमान में रहें तो दोनों ही बातें हल्की हो जाए। ये जो दूसरों के द्वारा किया गया अपमान है, दूसरों के द्वारा बोले जाने वाले कटु वचन हैं, इनमें अप्रभावित रहना सहज है या कठिन? नहीं, ऐसे थोड़ा ही सहज है। सहज नहीं है। सबसे कठिन काम संसार में अपमान को सहना ही होता है। होता है या नहीं? अपमान को सहना ही सबसे कठिन काम है दुनिया में। बच्चों की लड़ाई हो रही है बाप से, बच्चे बाप का अपमान करते हैं, बाप को कितना बुरा लगता है जानते हैं जो बाप बैठे हैं? अगर कोई बच्चा ऐसा करे, आज्ञा न माने, तो कितना बुरा लगता है उसको। अपमान को सहने की शक्ति किससे आएगी? स्वमान से, स्मृतियों से। हम बहुत बड़े हैं, अपने बड़ेपन में, अपनी महानताओं में स्थित हो जाएं। कितने महान हैं हम, बोलो। कोई उत्तर दे इसका, अपनी महानताओं के बारे में कुछ बोलें। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया। और कितने महान हैं, बोलो। मैंने बोले, वह उस बात पे भी ध्यान दें, हम वही इष्ट देव देवियां हैं। हमारे मंदिरों में हमारे दर्शन करने के लिए दरवाजा खुलने की इंतजार लोग कितना करते हैं, करते हैं या नहीं? सम्मान देते हैं बहुत। तो हमारी जड़ मूर्तियों को भी सम्मान दे रहे हैं, तो हम महान हैं, तब वो ये काम कर रहे हैं ना। इसी हॉल में मैंने बाबा की एक बात सुनी हुई थी जो मुझे बहुत काम आई पूरा जीवन। मैं बहुत बार सुनाई है वो बात, लेकिन ये बातें ऐसी हैं, एक बार सुनने से तो काम नहीं चलता, ये तो बार बार सुनी सुनाई जाए। बाबा ने कहा था साकार में, बच्चे रात्रि क्लास यहाँ जब होती थी ना, थोड़े से होते थे, जितने आप बैठे इससे भी आधे यहाँ बाबा बैठते थे, और घरेलू क्लास जैसी होती थी ना, बाप बच्चों से मिलता हो घर में। तो बाबा ने एक बार कहा, बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे। बहुत अच्छी बात है ना। हमारी सोई हुई चेतना जग जाती है। जो बहुत अपमान की फीलिंग करते हैं, ये कमजोरी है। अपमान इतना बड़ा होता नहीं जितना बड़ा मनुष्य उसे महसूस करता है। और क्यों छोटा अपमान भी बड़ा लगता है? और बोलो, ठीक बोल रहे, बोलो। अहंकार की वजह से। और बोलो, सभी सोचो इस पर, नहीं भाग्य नहीं इससे जोड़ेंगे। और बोलो, मान की अपेक्षा ज्यादा रहती है, एक असली कारण ये होता है। कामना ज्यादा है, जिसको जितनी कामना ज्यादा है उसका मन उतना ही कमजोर है। जरा सा किसी ने अपमान किया, बैठने को ही नहीं कहा ना, खुशी गुम, कहेगी इसके घर कभी नहीं आएंगे। देखा बैठने को भी नहीं कहा, भले वो बेचारा बिजी हो, आधे मिनट के बाद कह दिया हो भाई जी बैठो, लेकिन अपमान की फीलिंग। बाबा का तो यही महावाक्य है, जिसमें अभिमान ज्यादा है उसको अपमान की फीलिंग ज्यादा आती है, लेकिन कामनाएं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हमें कामनाओं को कम करते चलना है। मनुष्यों से हमें कुछ मिले, सोचो इस पर, ये कामना कम करनी बढ़ानी है, इस पे सभी पुरुषार्थ करेंगे। मनुष्यों से हमें जैसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे तृप्त हम हो जाएं, जो कुछ लेना है बाबा से। सम्मान भी चाहिए, भगवान सम्मान देता है। ताकत चाहिए, मदद चाहिए, खजाने चाहिए, सब बाबा की ओर से मिलती हैं। तो सभी इस बात पे बहुत ध्यान दें, हम बहुत बड़े हैं और बातें बहुत छोटी हैं। लिख लो जो लिख रहे हैं माताएं, काम करना इस पर, एक दिन में नहीं होता, रोज रोज पढ़ना। हम बहुत बड़े हैं, बातें बहुत छोटी हैं। आज पुरुषार्थ की एक बात और मुझे याद आ रही थी, हम जब मधुवन में थे तब उसका अभ्यास किया करते थे, वो बहुत सुंदर बात है। देखिए संकल्प है, एक एक संकल्प हमारे पुरुषार्थ में बल देने लगता है। वो संकल्प था, जब ऊपर देखें तो बाबा दिखाई दे, और जब नीचे देखें तो चमकती हुई आत्माएं दिखाई दें। इस संकल्प से मजा आएगा पुरुषार्थ में। ऊपर देखें महाज्योति, नीचे देखें चमकती ज्योति। धुन लगाएंगे इस तरह की, चलो और क्या स्मृति दिलाई बाबा ने, बोलो। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। कितनी बार माया को जीता है हमने, तुम बताओ। इसे नहीं पता, बताओ। नहीं इसे पता ही नहीं, तो इसे पीछे वाली, इसको भी नहीं पता। कन्याओं को ट्रेनिंग दी, नहीं तुम्हें पता, इसे भी नहीं पता। इनको घर से निला दी, मुझे नहीं पता। माया को जीता था या नहीं, कितनी बार जीता है, कितनी बार, अनेक माना, 10 बार 20 बार 100। हर कल्प में करोड़ों बार कह दें। अब सोचो इस हॉल में आज की तरह, अब की तरह कितनी बार बैठे हैं, सोच के देखो। यहीं बैठे हैं जैसे, अनेक बार बैठे हैं। बहुत मजा आएगा। कल्प कल्प हमने माया को जीता है। दो सेनाएं आपस में लड़ रही हों और एक सेना को ये बता दिया जाए तुम्हारी जीत निश्चित है, दूसरी सेना बहुत कमजोर है। पिछली बार भी तुम्हारा युद्ध हुआ था 5 साल पहले, तुमने उसको जीत लिया था। उससे 5 साल पहले भी हुआ था, तब भी जीत लिया था। उससे 5 साल पहले भी हुआ था, तब भी जीता था। तो अब कैसे लड़ेंगे योद्धा, खेल की तरह जीत के नशे में? ये तो जीते की जीते एक ही दिन में लड़ाई पूरी हो जाएगी। और माया दुश्मन को 5000 साल पहले भी जीता था, उससे 5000 साल पहले भी जीता था, उससे। तो अब जब माया से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? जीत के नशे के साथ। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जीत के नशे के साथ यदि कोई युद्ध करे तो युद्ध एक खेल बन जाएगा, युद्ध नहीं रहेगा। तो हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। कल्प कल्प इस माया को हमने जीता है। माया का कोई भी स्वरूप यदि जीता नहीं जा रहा है, मान लो किसी से क्रोध जीता नहीं जा रहा, इस पर बाबा बहुत सुनाते हैं, तो क्रोध को सामने देखकर संकल्प करो, इस क्रोध को तो मैंने हजारों बार जीता है। ठीक है, आपको दिल्ली घूमने के लिए भेज दिया जाए, दो दिन में आप सारी दिल्ली घूम लो, आजकल बस चलती है ना, सारा घुमाती है, अगले साल फिर भेजा जाए, फिर दिल्ली घूमाओ आप, तीसरी बार फिर भेजा जाए, कुतुब मीनार कैसे लगेगी? पुरानी लगेगी ना। साथियों को कहेंगे तुम ही देखाओ, मैं तो तीन बार देख लिए, और अगर कोई दस बार दिल्ली घूमाए इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो माया को भी हमने कितनी बार जीता है, इसको जरा फीलिंग में लाओ अपनी। हर 5000 साल इस तरह हम इस कर्म में रहे हैं तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद, इसे साक्षी भाव भी आएगा और हमारी सोई हुई शक्तियां भी जग जाएंगी, ताकत आ जाएगी हम में से। जो भी विकार किसी से जीता नहीं जा रहा है उसे बात करो, तुमको हमने अनेक बार जीता है, उसको भी याद दिला दो, वो भी ढीला पड़ जाएगा ना, कि तो बड़े पावरफुल हैं, मुझे हजारों बार जीत चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा, ये तो फिर जीत लेंगे। और स्मृति याद करो, क्या याद दिलाया, हम कौन थे सत्ययुग में, कैसे देवी देवता थे, दो चार बात सुना उनकी। सर्वगुण संपन्न देवता थे हम, ऐसे देवता थे हम जिनके सिर पर डबल ताज था, जो संपूर्ण पावन थे, हर एक के पास पुष्पक विमान था, माताओं के पास था ना, चलाएगा कौन, सहज चलेगा, सहज एक दो बटन होंगे, दबाया उठा, इस दूसरा दबाया स्पीड ले ली, दबाया नीचे उतर गया, सहज आराम से आ गए। बाबा ने कहा बच्चे भी चलाएंगे, जैसे आजकल बच्चे बाइक चला लेते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे देवता थे हम। शरीर कैसा था, कंचन काया, पीछे बाबा की मुरली में आया अभी, तुम्हारे देह सोने की तरह चमकते थे। देखो सोचने की बात है, बहुत सुंदर देह लेकिन इम्प्योर आकर्षण नहीं, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान है, पाउडर भी किसका बना होगा वहां, माताओं को बहुत चाहिए ना, सोने का पाउडर होगा, हीरे तो मुझे पता नहीं पिसते हैं या नहीं, हीरा बहुत कठोर होता है ना। हाँ वो तो बाबा तो किसी को भी चूरा कर दे फट से, बाबा का क्या, बाबा ने दिखाया था कि बाबा ने हीरे लिए और चूर पाउडर बनाया और सबके ऊपर डाल दिया, उनके अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी, मुरली में था ना पूरा अभ्यक्त मुरली में 3 साल पहले, तो बाबा तो किसी को भी चूरा कर दे वो तो हिमालय को भी हाथ में पकड़े और चूरा, लेकिन ऐसे सतयुग के देवता हम थे। याद करें अपना स्वरूप तो क्या होगा, क्या होगा, खुशी नहीं केवल, सारे संस्कार बदलने लगेंगे, देवत्व उभरने लगेगा, गुण आपे ही आएंगे। जिनको संस्कार बदलना कठिन लग रहा हो वो अपने देव स्वरूप को याद किया करें। बाबा इसी हॉल में, ये चित्र है ना, तब का ही है, जलाना भाई, जलता है, दिखा दो सबको, ये चित्र सबसे पुराना है, वही है ना छोटे लाल भाई, बिल्कुल अति पुराना, इसको हो गए होंगे 50 साल से भी ज्यादा थोड़े, देखो ये अब तक सुंदर है, बाबा इसको देखते थे क्लास में प्रवेश करते ही और आनंदित हो जाते थे, मैं ये बस नशा, तब बाबा कहा करते थे इन चित्रों के आगे आके बैठो, यहाँ चित्र थे ये दो पीछे है ना, ऐसे ही और भी चित्र होते थे, तब उनके आगे बैठो तो तुम्हारा विचार मथन चलेगा। तो हम कैसे देवता थे? अगर हम अपना स्वरूप याद करेंगे तो वो देवत्व हमारे जीवन में आने लगेगा। कोई भी संस्कार किसी को जीतना बदलना कठिन लग रहा हो, देव स्वरूप को सामने लाएं, मैं ये हूं। एक चीज और मुझे याद आ गई, मुझे फोन आते रहते हैं कुछ कुछ छोटी कन्याओं के, खुल के बात करती हैं, मुझे फीलिंग बहुत आती है और मुझे बहुत खराब लगता है। मेरा एक दो दिन निकल जाता है फीलिंग में, फिर कोई कुछ कह देता है तो लंबा समय इसी में जा रहा है, मैं क्या करूं? स्मृति स्वरूप होने से हम फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। वही स्मृति पहली जो आप सबने बताई, हम हैं शिव शक्तियां। तो क्या शिव की शक्ति को छोटी बात मुरझाहट में ला सकती है? चिंतन करेंगे, क्या शिव की शक्ति किसी की छोटी बात सुन के अपनी खुशी को खो सकती है? शिव की शक्तियां, वो शक्तियां जिन्हें संसार की पालना करनी है, क्या छोटी बातों से फीलिंग में आ सकती है? चिंतन करेंगे तो क्या होगा इससे, क्या होगा? हाँ नहीं, इससे पहले की बात, शक्तियां जागृत हो जाएंगी और लगेगा ये बात जिसके लिए हम फीलिंग कर रहे हैं तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं। मूल्य किसका है? हमारी श्रेष्ठ स्थिति का। बातों का मूल्य है कहाँ? मान लो किसी को सेंटर में झाड़ू लगाने की सेवा दी गई और उस बेचारी ने थोड़ा सा कचरा कोने में छोड़ दिया और दीदी ने कहा ये क्या तुमसे झाड़ू लगाना भी नहीं आता, बस इतना कहा और बहन जी का नशा डाउन, सारा दिन फीलिंग में है, मूड ऑफ है, ज्ञान योग तो गया दूर, खुशी भी नहीं है, जीवन का सुख ही नहीं, अब सोच रही है यहाँ रहना ठीक नहीं, यहाँ तो कोई जीने ही नहीं देगा। कहा इतना ही, वो ये भी कह सकती थी कि हाँ मैं अच्छी तरह लगाऊंगी, मुझसे भूल गया अब लगा देती हूँ। छोटी बात को छोटे में खत्म कर देना चाहिए, बल्कि बड़ी बात को भी छोटे में खत्म कर देना चाहिए। तो हमारे संस्कार बदल जाते हैं स्मृति स्वरूप होने से। और पहली स्मृति जिसकी हम बात कर रहे थे, हमें जाना है, इसको तो हमें पक्का करना ही पड़ेगा, समय कराएगा हमसे। तो क्या आएगा इससे हमारे जीवन में? वैराग्य। और वैराग्य हमें क्या बना देगा? संपूर्णता से पहले वैराग्य आत्मा को योग युक्त बनाएगा। बिना वैराग्य के कोई भी योगी बन नहीं सकते। जिनका जीवन, जिनका मन आसक्तियों में लगा हुआ है, वो योगी नहीं बन सकते। जिनको संसार से बहुत कुछ पाने की इच्छा है, वो योगी नहीं बन सकते। तो हमें घर जाना है, इसको हम अशरीरी होने का अभ्यास भी बना दें। ये देह छोड़ेंगे, मैं आत्मा उड़ के जाऊंगी अपने घर, जाने की फीलिंग और घर में रहने की फीलिंग भी करनी चाहिए। सभी अपने अपने पुरुषार्थ में परम धाम की शांति का गहरा अनुभव करें। समझ रहे? हमारा घर शांति धाम है ये कहने से काम नहीं चल जाएगा। हम उस घर में हैं, मैं आत्मा उस घर में हूं। जैसे किसी को अगर बर्फ के ऊपर बैठा दिया जाए, बर्फ की सिल्ली मिलती है ना, उस पे कहा बैठ जाओ तो क्या होगा उसको? क्या होगा? नहीं, बैठ गया तो क्या होगा? बैठने से ठंड आने लगेगी ना, थोड़ी देर में शरीर ठंडा होने लगेगा। परम धाम में हम बैठ जाएं तो क्या होगा? परम धाम की संपूर्ण शांति आत्मा में समाने लगेगी, जो बहुत स्वीट है। ये परम धाम की जो शांति है ये बहुत मीठी शांति है, ड्राई नहीं, सूखी शांति नहीं, ऐसी शांति नहीं जो हमको प्रिय न लगे, ऐसी शांति जो बहुत प्रिय लगे आत्मा को। तो उस शांति का अनुभव भी करना है और जाना है, ये देह छोड़कर जाना है। और आना है कैसे? देवता बनकर जाएंगे, फरिश्ता बनकर उतरेंगे तो क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। तो ये अभ्यास सबको करते रहना। और किसी को याद आई कोई स्मृति? बाबा ने हमें कुछ याद दिलाया है, बोलो। अब वर्तमान की स्मृतियों को देखो, संगम युग की। तुम विघ्न विनाशक हो, तुम्हारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। और बोलो, ये सारे स्वमान हमारी स्मृतियां ही तो है ना। हमारे स्वमान सो गए थे, बाबा ने उनको जगा दिया है। और कौन हो तुम? स्वराज्य अधिकारी हो। बहुत गहरी बात है, इतनी मोटी नहीं है जितना सुनने में मोटी लगती है। फील करें सभी, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। तो क्या हूं? मन की मालिक हूं। मैं एक ही बात को लूंगा, बाकी सबके मालिक हैं वो आप जानते हैं। मैं मन की मालिक हूं, तो मन को मेरा आदेश मानना ही है। आप इस सत्य को जान लें पहले, फिर स्वीकार करें। मन हमारा हर आदेश मानने के लिए रेडी है। सुना मैंने क्या कहा? हमें अधिकार है, हम अपने मन को जैसा चाहें चलाएं। जरा इसका फायदा उठा के देखेंगे, इसे करके देखना है कि क्या सचमुच मन हमारी आज्ञा को मानता है या भागता है कहीं कहीं। तो इसका अभ्यास है, बहुत बार अभ्यास करने पर ही अनुभूति होगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं। अपने को याद दिलाएंगे, हे मन मैं तुम्हारी मालिक हूं, तो मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते। हे मेरी बुद्धि मैं तुम्हारी मालिक हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम भटक नहीं सकती। हे मेरे संस्कार मैं तुम्हारी मालिक हूं, जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही बनना है। कर्मेंद्रियां मैं तुम्हारी मालिक हूं, अब शीतल होना है। और किसके मालिक हैं हम? देह के। हे देह पांच तत्व प्रकृति मैं तुम्हारी मालिक हूं, प्रकृति की कोई भी पीड़ा मुझे दुखी नहीं कर सकती। और किसके मालिक? सबसे गुहे। देखो किसको याद आता है? हाँ तीन, ये भी ठीक कहा आपने। तीनों लोकों के मालिक, तीनों लोक भी हमारे घर हैं, हम अधिकार से जहां चाहे जा सकते हैं। और हम मालिक हैं सर्व शक्तियों के। लेकिन इन फीलिंग्स को बहुत बढ़ाना है। ये आप ही हो जाएंगी ये नहीं, ये हमारी बहुत गहन साधना है। लंबे समय अभ्यास करने पर हम मन को कहेंगे अब शांत बैठ जाओ, परम धाम में बैठो, वहीं बैठेगा। लेकिन अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो मन हमारे आदेश को मानेगा नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है, आदेश किसका माना जाता है? है? जो सीट पर हो। राजा सीट से उतर जाए, प्रधानमंत्री इलेक्शन हार जाए तो उसकी कौन मानेगा? हम भी सीट पर रहे। कौन सी सीट? स्वमान की सीट और दूसरी भ्रकुटी की सीट, ये सिंहासन ये भी तो सीट है ना हमारी, एक ये सीट, एक स्वमान की सीट। और क्या याद दिलाया बाबा ने हमें, बोलो कौन हो तुम? परमात्मा से एक बहुत बड़ी स्मृति दिला दी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी बाबा के बारे में। अब सोचो और बोलो, बहुत बड़ी स्मृति दे। देखो बाबा हंसी खुशी में एक चीज मुरलियों में कहता है, उससे आप बोलेंगे मैं तुम्हारा ओबीडियंट फादर हूँ, ओबीडियंट टीचर हूँ, ओबीडियंट सतगुरु हूँ, बाप तो बच्चों का गुलाम होता है, कहता है ना ऐसे ऐसे, लौकिक की याद दिलाता है। बाप बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है ना, माँ भी, बच्चा बीमार है तो शायद रात जाग रही है, अपनी नींद भी छोड़ के जाग रही है, सेवा भाव आ जाता है ना। तो बाबा एक स्मृति दिलाते हैं, मैं भी तुम्हारा हूं। क्या करेंगे हम, भगवान हमारा है, क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे या नहीं? भगवान हमारा है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में एक बहुत बड़ी बात कही, मैं केवल याद दिलाऊंगा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हें संसार की आत्माओं को दिलानी है, ये तुम्हारा अधिकार है। बाबा ने हमें अधिकार दे दिया है, तुम सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाओ। समझ लें जरा इस बात को गहराई से। हमारे पास बाबा के बहुत सारे वरदान भी हैं, हैं माताओं को मिले हैं कुछ या नहीं, या भाइयों भाइयों को मिले हैं? कलश माताओं को दे दिया हो बाबा ने, वरदान भाइयों को बांट दिया हो आधा आधा। बाबा एक बात जब कहता है ना, मुझे बहुत आनंद आता है, दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, वो ताकत केवल मुझ में है, किसी में नहीं बाकी, वो मैं किसी को देता भी नहीं। क्यों नहीं देता? मिसयूज कर देंगे, मनुष्य की आदत है ना, थोड़ा चमत्कार दिखाने लगेंगे, गड़बड़ करने लगेंगे, और उसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दे देता हूँ, बच्चा भी नहीं देता, है ना, बहुत अच्छी बात। मजा आता है ये बात बाबा की सुन के, कि बाबा अपने सारे रहस्य हमारे सामने खोल देता है ना, कितने बड़े भाग्य की बात है, सारे रहस्य अपने खोल देता है। जो संसार जिसको जरा भी जान नहीं सकता, हम उसके मुख से सारे रहस्य सुनते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, बाबा ने अगले सीजन तक के लिए दो काम दिए हैं। मिलना है अगले सीजन में बाबा से या नहीं? मिलना है, जिनको मिलना हो मिल लेना, फिर बाबा का तो पीछे जा रहा है ना, पता नहीं अब के कितना रहेगा। तो दो काम दिए हैं, तभी मिलना होगा। पहला, निर्विघ्न जीवन, अपना जीवन, बाकी की बात सोचें, सेंटर ये वो निर्विघ्न वो और बात, हमारा जीवन निर्विघ्न हो। और दूसरा, शुभचिंतक नहीं, कुछ और कहा था, कमी छोड़ने को कहा था, उसमें दो बातें विशेष याद दिलाई थी, व्यर्थ समाप्त और क्रोध समाप्त। क्रोध समाप्त बहुतों का तो हो गया होगा, किन किन का बहुत सारा क्रोध खत्म हो गया, हाथ उठाओ जरा उमंग से, बहुत अच्छा, बहुत है, उठाओ उठाओ, बाबा खुश होगा देख के, वेरी गुड। जिनका 50-50 हो गया वो हाथ उठाओ, जो 50 वाले थोड़े, तो बाकी 100% जिनका रहा है वो हाथ उठाओ, नहीं उसमें भी नहीं, 50-50 तो बहुतों का हो गया होगा ना, 50 छोड़ दिया, 50 बाकी है। क्रोध को छोड़ना है, कौन छोड़ेगा, हम या क्रोध हमें छोड़ेगा? हम क्रोध को छोड़े या क्रोध हमें छोड़ जाए, हमें छोड़ना है ना। एक तो संकल्प करेंगे मुझे क्रोध छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, इस संकल्प में भी बहुत ताकत है ना। फिर याद करेंगे, मैं एक ही विधि बता देता हूं आज आपको, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। सवेरे उठ के जरा 7 बार याद करना, फीलिंग सहित, सत्य है ना ये, क्रोध हमारा संस्कार थोड़ा ही, वो तो माया से आया है। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। तो जिस चीज को हम मेरा कहते हैं वही तो मेरे पास रहेगा। हमने कर दिया क्रोध मेरा नहीं है तो वो नहीं है, जाएगा वो। कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए, हम कहें तुम हमारे नहीं हो, तो रहेगा या जाएगा? चुपचाप चला जाएगा बेचारा, ये तो पहचानते भी नहीं है। क्रोध का भी ऐसे ही होगा, सूक्ष्म गति भी यही है, जो स्थूल गति है। संकल्प करें क्रोध मेरा संस्कार नहीं है तो जाएगा। मुझे बहुत क्रोध आता है ये तो जाता ही नहीं, अगर ये कहेंगे बार बार तो वो जाएगा नहीं। वो भी तो सुनता है ना, बाबा कहते हैं ना माया भी सुनती है, क्रोध भी सुनता है ना, ये कह रहे जाएगा नहीं तो वो सुन रहा है, कह रहे जाएगा नहीं तो ठीक है, इधर ही अच्छा ठिकाना है। तो सभी अपने जीवन को निर्विघ्न भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे निर्विघ्न? को चाहिए इंदिरा बहन, प्रीति बहन भाई, कहाँ के ये पता नहीं, कहाँ की प्रीति बहन हो, जाए बाहर, ग्लोबल ऑफिस है नहीं भैया। तो निर्विघ्न जीवन बनाने के लिए आज की बात ले ले बस, स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास करें। जितना अच्छा योग होगा उतना ही अच्छा जीवन होगा। अपने चित्त को शांत करना अपने हाथ में है। कई लोगों का चित्त शांत नहीं हो रहा है, इसे शांत करेंगे। अब चलेंगे एक बहुत अच्छे अभ्यास के साथ, समाप्त करते हैं। बाबा के 1000 भुजाएं मेरे सिर पर हैं। इस नशे में बैठेंगे जरा, बाबा की 1000 भुजाएं मेरे सिर पर।
प्रभु।